एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में हम सबकी जिंदगी पर गहरा असर डाला है, महामारियां।
हाँ बिल्कुल।
और इसके लिए हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे क्रिश्चियन डब्ल्यू मैकमिलन की किताब पैंडेमिक्स के जरिए।
ये अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज का हिस्सा है।
हाँ, जो मुश्किल चीजों को भी आसानी से समझाती है।
मैं हूँ आपका साथी सफर में,
और मैं कोशिश करूंगी कि हम इस किताब के जरिए महामारियों की जटिल कहानी को समझ सकें।
और ये आज जरूरी क्यों है?
हाँ,
क्योंकि जैसा हमने अभी अभी देखा, पैंडेमिक सिर्फ मतलब डॉक्टरी मामला नहीं होता।
सही बात है, ये पूरे समाज को, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को, सबको हिला देता है। मैकमिलन की किताब इसी बड़ी तस्वीर को सामने रखती है।
और एक और बात, अक्सर होता ये है कि जैसे ही मुसीबत चलती है हम सबक भूल जाते हैं। हाँ, लेखक इसे हिस्टोरिकल अमनीजिया कहते हैं, मतलब ऐतिहासिक विस्मृति।
और नतीजा?
अगली बार हम फिर तैयार नहीं होते। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस विस्मृति को थोड़ा तोड़ने की और समझने की कि इतिहास हमें क्या सिखा सकता है,
बिल्कुल,
खासकर समाज की भूमिका क्या रही है और इन सबको का हमारे लिए मतलब भविष्य के लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए।
चलिए तो पहले लेखक के बारे में जानते हैं। क्रिश्चियन डब्ल्यू मैकमिलन वर्जीनिया विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं।
हाँ, और मजे की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो कोई वायरोलॉजिस्ट या एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, वो इतिहासकार है, बीमारियों के इतिहासकार।
ये फर्क अहम है ना?
बहुत अहम है, क्योंकि एक वायरस साइंटिस्ट शायद वायरस के जेनेटिक्स पर फोकस करे, लेकिन मैकमिलन का नजरिया बहुत बड़ा है। वो देखते हैं कि बीमारियां समाज में कैसे उभरती हैं, फैलती हैं, और हम इंसान मतलब हमारा समाज कैसे उनसे निपटता है। वो पैथोजेंस यानी रोगाणुओं को सिर्फ बायोलॉजिकल एजेंट नहीं मानते, वो उन्हें हिस्टोरिकल एक्टर्स कहते हैं।
हिस्टोरिकल एक्टर्स मतलब ऐतिहासिक कर्ता।
हाँ, जिनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा समाज कैसा है, हमारे शहर कैसे हैं, व्यापार कैसे होता है, गरीबी अमीरी का फर्क कितना है।
अच्छा, तो वो विज्ञान, समाज और खासकर जो लोग हाशिए पर हैं उनके बीच के जटिल रिश्तों को देखते हैं।
एकदम। उनका काम सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाना कि क्यों हुआ और इसमें हमारे समाज की बनावट का क्या रोल था।
तो ये किताब पैंडेमिक्स क्या करती है? ये एक तरह का इतिहास का सर्वे है?
हाँ, ये महामारियों का एक संक्षिप्त लेकिन बहुत गहरा ऐतिहासिक जायजा है। मकसद सिर्फ मौतें गिनाना नहीं है,
नहीं,
बल्कि ये दिखाना है कि महामारियां कोई अनोखी अचानक आई आफत नहीं है, ये मानव इतिहास का एक आवर्ती हिस्सा रही है, मतलब रिकरिंग फीचर।
तो ये किसके लिए है? आम लोगों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए?
सबके लिए, जो भी समझना चाहता है कि इतिहास की कौन सी ताकतें हमारी दुनिया को आकार देती हैं। और कोविड के बाद तो मुझे लगता है हम सब इस विषय को ज्यादा महसूस करते हैं।
हाँ बिल्कुल।
किताब का जो सबसे बड़ा तर्क है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, वो ये है कि पेंडेमिक सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती।
अच्छा।
वो बायोसोशल होती हैं, जैव सामाजिक, मतलब वायरस या बैक्टीरिया जरूरी है, नेसेसरी कॉज।
हाँ।
लेकिन वो महामारी बनेगा या नहीं, कितनी तबाही मचाएगा,
वो इंसानी वजहों पर निर्भर करता है।
बिल्कुल। सफिशिएंट कॉज इंसानी होते हैं।
हाँ।
जैसे व्यापार के रास्ते, युद्ध, शहरों की भीड़, गरीबी, सरकार का ध्यान देना या न देना, ये सब तय करते हैं कि बीमारी कितनी फैलेगी।
तो किताब का असली मकसद है उस ऐतिहासिक विस्मृति से लड़ना।
हाँ, ताकि हम समझें कि रोगाणु और इंसानियत का रिश्ता कितना जटिल है, और इस समझ से हम भविष्य के लिए बेहतर, ज्यादा न्यायसंगत रणनीतियां बना सकें।
ठीक है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। पहला चैप्टर, सवाल यही है, महामारी है क्या?
हाँ, ये पैंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क बताता है। पैंडेमिक मतलब जो दुनिया भर में फैल जाए, एपिडेमिक जो एक इलाके में रहे।
और दिलचस्प बात यह है कि कोई लोकल बीमारी ग्लोबल पैंडेमिक बने, ये लगभग हमेशा इंसानी हरकतों का नतीजा होता है।
बिल्कुल। व्यापार, लोगों का आना जाना, लड़ाई झगड़ा, यहीं पर ज़ूनोसिस का कॉन्सेप्ट भी आता है।
ज़ूनोसिस मतलब जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियां।
हाँ, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी, इबोला, कोरोना, ज्यादातर नई बीमारियां वहीं से तो आ रही हैं। ये चैप्टर एक तरह से स्टेज सेट करता है। ये बताता है कि कहानी असल में हमारे और इन माइक्रोब्स के नाजुक रिश्ते की है,
जिसे हम अक्सर बिगाड़ देते हैं।
हाँ, अब चैप्टर 2 प्लेग पर है, यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। सदियों पुरानी कहानी है ये।
ब्लैक डेथ 14वीं सदी, मियामी काफी है।
यूरोप की 30 से 50% आबादी, कल्पना करना भी मुश्किल है। और असर सिर्फ मौतें नहीं थी।
नहीं, समाज पर क्या असर हुआ?
समाज हिल गया था, मजदूर कम हो गए, तो पुरानी फ्यूडल व्यवस्था चरमरा गई। और दूसरी तरफ डर ने लोगों में कट्टरता भर दी,
बलि का बकरा ढूंढना शुरू हो गया।
हाँ, स्केपगोटिंग, खासकर यहूदी समुदायों को निशाना बनाया गया। सबक क्या था कि उस जमाने के ट्रेड रूट्स, सिल्क रोड, समुद्री रास्ते, वो बीमारी के सुपर हाईवे बन गए थे।
और ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, 19वीं सदी के आखिर में फिर प्लेग फैला, तीसरी प्लेग महामारी।
हाँ, इस बार स्टीम शिप्स के जरिए पूरी दुनिया में। इस दौरान कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे बैक्टीरिया की खोज हुई, पता चला चूहे पिस्सू का कनेक्शन है।
लेकिन
इसका एक सिया पहलू भी था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में या सैन फ्रांसिस्को में प्लेग कंट्रोल के नाम पर नस्ल भेदी और दमनकारी नीतियां लागू की गईं।
तो प्लेग हमें दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे बीमारी फैला सकता है,
और समाज का डर और पूर्वाग्रह कैसे हमारी प्रतिक्रिया को खतरनाक बना सकता है। समाज की भूमिका एकदम साफ है यहाँ।
अगला चैप्टर चेचक पर है, स्मॉल पॉक्स। इसकी कहानी तो बड़ी दोधारी है।
बिल्कुल, एक तरफ ये अमेरिका के उपनिवेशीकरण में एक हथियार बन गया।
हथियार?
हाँ, वर्जिन सॉयल एपिडेमिक का कॉन्सेप्ट है, मतलब जब कोई नई बीमारी ऐसी आबादी में जाती है जिसमें कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो मौतें बहुत ज्यादा होती हैं।
अच्छा।
चेचक और दूसरी यूरोपीय बीमारियों ने अमेरिका की मूल आबादी का शायद 90% हिस्सा खत्म कर दिया। इससे यूरोपियनों की जीत आसान हो गई, बीमारी ने इतिहास बदल दिया।
लेकिन चेचक की कहानी का दूसरा पहलू भी है।
हाँ, उम्मीद वाला पहलू। ये वो बीमारी है जिस पर इंसान ने सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ जीत हासिल की, वैक्सीनेशन।
एडवर्ड जेनर, काउपॉक्स?
हाँ, पहले वो पुरानी तकनीक थी वेरियोलेशन की, फिर जेनर का काम, और फिर 20वीं सदी में WHO का वो जबरदस्त ग्लोबल कैंपेन,
जिससे 1980 तक चेचक दुनिया से खत्म हो गया।
ये विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत दिखाता है, एक ही बीमारी तबाही भी और उम्मीद भी।
अगला है हैजा, कॉलरा। इसे 19वीं सदी की महामारी कहते हैं। ये काफी हद तक मतलब मॉडर्निटी की देन थी।
हाँ, औद्योगिकीकरण, शहरों का बेतरतीब बढ़ना, लोग गांवों से शहर आए, भीड़ बढ़ी, साफ सफाई का इंतजाम नहीं,
पानी से पहले वाले विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के लिए एकदम सही माहौल।
बिल्कुल, और स्टीम शिप्स ने इसे भारत से पूरी दुनिया में फैला दिया, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से।
लेकिन यही एक हीरो भी है, जॉन स्नो।
हाँ, लंदन का वो ब्रॉड स्ट्रीट पंप वाला किस्सा 1854 का। स्नो ने नक्शे बनाए, लोगों से बात की और पता लगाया कि बीमारी एक खास गंदे पानी के पंप से आ रही है।
उन्होंने उस जमाने की मियाज़मा थ्योरी को चैलेंज किया कि बीमारी खराब हवा से होती है।
हाँ, उनकी बात फौरन नहीं मानी गई, पर उनके काम ने आज की एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की नींव रखी। हैजा का सबक क्या है?
कि सिर्फ दवा काफी नहीं है।
बिल्कुल, समाज को बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ता है साफ पानी, सफाई, मजबूत हेल्थ सिस्टम में। फिर से वही बात, समाज की भूमिका और जिम्मेदारी।
अब आते हैं इन्फ्लुएंजा पर, खासकर 1918 वाली महामारी स्पैनिश फ्लू,
जिसे स्पैनिश फ्लू कहना गलत है जैसा किताब बताती है। और ये इतिहास की सबसे जानलेवा अकेली महामारी थी, 5 से 10 करोड़ मौतें,
पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा।
हाँ, और युद्ध के हालात ने इसे और भड़काया, सैनिकों की मूवमेंट, भीड़ भरे बैरिक्स, सेंसरशिप जिसने खबरें दबाई, एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था वायरस के लिए।
किताब इन्फ्लुएंजा वायरस की खासियत भी बताती है, वो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट।
हाँ, मतलब वायरस बहुत तेजी से बदलता है, अपना रूप बदल लेता है, इसीलिए हमें हर साल फ्लू शॉट चाहिए होता है,
और इसीलिए कभी कभी एकदम नया खतरनाक स्ट्रेन आ जाता है।
1918 एक डरावना उदाहरण है कि एक सांस की बीमारी कितनी तेजी से फैल सकती है, और उस वक्त दवाएं न होने से डॉक्टर कितने लाचार थे।
इसके बाद किताब आती है HIV एड्स पर, 20वीं सदी की शायद सबसे चर्चित नई महामारी,
और ये दिखाती है कि सामाजिक और राजनीतिक कारण कितने जानलेवा हो सकते हैं।
कैसे?
ये वायरस शायद अफ्रीका में बंदरों से आया, दशकों तक धीरे धीरे खामोशी से फैला, 1921 में पहचान हुई। ये धीमी रफ्तार वाली आफत थी,
लेकिन फोकस इस पर है कि समाज ने रिएक्ट कैसे किया,
और शुरुआती रिएक्शन बहुत बुरा था। सरकारें, खासकर अमेरिका में, इसे नजरअंदाज करती रहीं। क्यों?
क्योंकि हाशिए के समूहों को प्रभावित कर रहा था।
हाँ, समलैंगिक पुरुष, ड्रग यूजर्स, हेती से आए लोग, ये दिखाता है कि बीमारी से जुड़ा कलंक, पूर्वाग्रह और राजनीतिक अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है।
लेकिन ये सिर्फ निराशा की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हिम्मत और एक्टिविज्म की भी कहानी है। ACTUPU जैसे ग्रुप्स ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी।
हाँ, रिसर्च फंडिंग के लिए, दवा के ट्रायल तेज करने के लिए।
उन्होंने मरीजों, डॉक्टरों और सरकार के रिश्ते को ही बदल दिया।
वैज्ञानिक जीत भी मिली, एंटी रेट्रोवायरल दवाएं आईं।
लेकिन एड्स खत्म नहीं हुआ है। नहीं, आज भी अफ्रीका के कई हिस्सों में ये एक बड़ी चुनौती है जहां इलाज तक पहुंच मुश्किल है। ये दिखाता है कि साइंस के साथ साथ सोशल जस्टिस कितना जरूरी है।
और आखिरी चैप्टर, ये अतीत को आज से जोड़ता है।
हाँ, 21वीं सदी के प्रकोप, सार्स, मर्स, इबोला, जीका, ये सब आने वाले समय के संकेत हैं।
लेखक कहते हैं कि नई बीमारियों के उभरने की वजह और तेज हो रही हैं।
बिल्कुल, जंगल कट रहे हैं, हम जानवरों के और करीब जा रहे हैं जिनमें नए वायरस हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से मच्छर जैसे वेक्टर का दायरा बदल रहा है, हवाई यात्रा इतनी बढ़ गई है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा।
तो ये एक तरह से एक्शन का कॉल है।
हाँ, तैयारी, मजबूत पब्लिक हेल्थ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाज की गैर बराबरी को दूर करना, यही हथियार है। अंत निराशा का नहीं, चेतावनी का है। अगली महामारी आएगी, सवाल अगर का नहीं कब का है।
और जब आएगी तो हम इतिहास से क्या सीखेंगे, ये हम पर है। तो अगर हम पूरी किताब के मुख्य संदेशों को समेटें तो पहला और सबसे जरूरी क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है, महामारियां सिर्फ जैविक नहीं, जैव सामाजिक है। वायरस चिंगारी है, आग समाज की बनावट से फैलती है। व्यापार, शहर, गरीबी, नीतियां, ये सब तय करते हैं। हमें माइक्रोस्कोप से आगे देखना होगा।
दूसरा, ग्लोबलाइजेशन इंजन है। सिल्क रोड से हवाई जहाज तक, दुनिया का जुड़ना ही बीमारियों को फैलाता है।
हाँ, ये आज की दुनिया का विरोधाभास है।
तीसरा, और ये बहुत अहम है, बीमारी हमेशा गैर बराबरी को उजागर करती है और बढ़ाती है। ये कभी ग्रेट इक्वलाइजर नहीं होती।
बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा मार हमेशा गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों पर पड़ती है। खराब सफाई, इलाज की कमी, हमने कोविड में भी देखा ये।
चौथा, विज्ञान से जुड़ा है। विज्ञान की दोहरी विरासत है, जीते भी हैं और कभी कभी खतरनाक आत्मविश्वास भी।
हाँ, चेचक का खात्मा जबरदस्त था, लेकिन ये सोच के हमने बीमारियों पर जीत पा ली है, वो खतरनाक साबित हुई। HIV ने, कोविड ने इसे तोड़ा। विज्ञान ताकतवर है, पर जादू की छड़ी नहीं।
पांचवा, इंसानी बर्ताव, डर, दोष मढ़ना और फिर हिम्मत दिखाने का पैटर्न बार बार दोहराता है।
सदियों से डर फैलता है, बलि का बकरा ढूंढा जाता है, ब्लैक डेथ में यहूदी, एड्स में समलैंगिक पुरुष, अफवाहें फैलती हैं, लेकिन साथ ही हिम्मत और वैज्ञानिक सूझबूझ भी दिखती है।
और छठा, जो आज सबसे जरूरी लगता है, एंथ्रोपोसीन युग में भविष्य की महामारियों का खतरा बढ़ गया है।
हाँ, हमारी गतिविधियां, जंगल काटना, क्लाइमेट चेंज नए खतरे पैदा कर रही हैं, ज़ूनोटिक स्पिलओवर का रिस्क बढ़ रहा है। ये इतिहास सिर्फ गुजरी कहानी नहीं, आने वाली चुनौतियों का नक्शा है।
किताब में कुछ पंक्तियां हैं जो इन विचारों को मतलब बहुत अच्छे से कहती हैं।
हाँ, जैसे पहला, महामारी कभी सिर्फ एक जैविक घटना नहीं होती, ये एक सामाजिक घटना है। एक रोगाणु ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मानव समाज आग के लिए ईंधन और रास्ते प्रदान करता है। ये पूरी किताब का निचोड़ है।
बिल्कुल, वायरस अकेला कुछ नहीं कर सकता।
दूसरा, इतिहास गवाह है, प्लेग और महामारी पर प्रतिक्रिया के वही पैटर्न दोहराए जाते हैं। डर दोषारोपण को रास्ता देता है और सबसे कमजोर लोगों को बीमारी के लिए बलि का बकरा बना दिया जाता है। ये हमें नफरत और भेदभाव से लड़ने की याद दिलाता है।
तीसरा, सार्वजनिक स्वास्थ्य का इतिहास बीमारी के दो सिद्धांतों पर लड़ाई की कहानी है, एक जो व्यक्ति को दोष देता है और दूसरा जो पर्यावरण पर सवाल उठाता है। बाद वाले की जीत ने हमेशा सबसे बड़ी प्रगति की है, मतलब सिस्टम को सुधारो, सिर्फ व्यक्ति को दोष मत दो।
हाँ, जॉन स्नो वाला सबक, साफ पानी, बेहतर घर, इलाज तक पहुंच।
और चौथा, जो चेतावनी है, हम एक नए महामारी युग में प्रवेश कर चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या एक और महामारी आएगी, बल्कि यह है कि जब आएगी तो हम अतीत के कौन से सबक याद रखना चुनेंगे। ये सीधी चुनौती है उस ऐतिहासिक विस्मृति को।
बिल्कुल, जिम्मेदारी हमारी है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम क्या कर सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर?
व्यक्तिगत स्तर पर ये हमें समझदारी भरे हेल्थ फैसले लेने की अहमियत बताती है। टीके क्यों जरूरी हैं, सफाई क्यों जरूरी है।
हाँ,
ये हमें अफवाहों और गलत जानकारी को पहचानने में भी मदद करती है, खासकर वो बातें जो डर फैलाएं या किसी को निशाना बनाएं, और ये समझने में कि हमारे छोटे फैसले भी बड़ा असर डालते हैं।
जैसे टीका लगवाना।
हाँ, इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, समाज पर पड़ता है।
और समाज और सरकार के स्तर पर?
वहाँ तो मायने और भी गहरे हैं। पब्लिक हेल्थ में लगातार निवेश जरूरी है, सिर्फ संकट के समय नहीं, हमेशा।
हेल्थ सिस्टम मजबूत होने चाहिए,
नीतियाँ सबके लिए बराबर हों, खासकर कमजोर लोगों का ध्यान रखें। दुनिया के देशों को मिलकर काम करना होगा।
जैसे चेचक खत्म किया।
हाँ, बीमारी से जुड़े कलंक से लड़ना होगा, और सबसे जरूरी, महामारी की याद को जिंदा रखना होगा। तैयारी हमेशा जारी रखनी होगी, ये नहीं कि खतरा टला और हम भूल गए।
और पर्यावरण और सेहत का जुड़ाव समझना होगा।
बिल्कुल, जंगल कटेंगे, क्लाइमेट बदलेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी।
जब मैंने ये सब पढ़ा तो मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात वो वर्जिन सॉइल एपिडेमिक थी।
हाँ,
कैसे एक बीमारी ने पूरा इतिहास बदल दिया।
हाँ, वो वाकई भयानक है। और दूसरी तरफ ACTUP जैसे लोगों की हिम्मत वो प्रेरणा देती है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हम बीमारियों के सामने कितने लाचार होंगे, ये सिर्फ हमारी किस्मत या बायोलॉजी तय नहीं करती। ये हमारे समाज के चुनाव तय करते हैं। गरीबी, गैर बराबरी, सरकार की जिम्मेदारी, ये चीजें हमें ज्यादा कमजोर बनाती हैं।
सही कहा।
इसलिए तैयारी का मतलब सिर्फ नए टीके या दवाएं नहीं है, तैयारी का मतलब एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाना। असली तैयारी वही है।
बिल्कुल, इतिहास हमें रास्ता दिखाता है, बताता है कि क्या काम करता है क्या नहीं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब हम सिर्फ वायरस पर नहीं, अपनी सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियों पर भी ध्यान देंगे।
उम्मीद ही है कि हम सीखें और उस सीख पर अमल करें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।